नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार ने पारदर्शी और व्यावहारिक ढंग से बजट तैयार किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, सरकार ने पिछले दशक में रेलवे के सभी क्षेत्रों में बदलाव किया है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। केरलम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 55 और आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। सरकार ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक और जहाज सुरक्षित। दूसरा एलपीजी वाहक नंदा देवी होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते गुजरात के कांडला बंदरगाह पहुंचा। इसराइल द्वारा ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी की हत्या के दावे के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और बढ़ा। और ईरान के साथ युद्ध के विरोध में अमेरिका के शीर्ष आतंकरोधी अधिकारी जो किंट ने इस्तीफा दिया। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने पारदर्शी और व्यावहारिक ढंग से बजट तैयार किया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग विधेयक को लोकसभा को वापस भेज दिया है। लोकसभा पहले ही विनियोग विधेयक को अपनी मंजूरी दे चुकी है। ये विधेयक वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करता है। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि केंद्र आर्थिक स्थिरीकरण कोष के लिए लगभग 57,382 करोड़ रुपए दे रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी रबी फसल की अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 19,230 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 5,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत का विद्युत क्षेत्र बेहद मजबूत है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से स्थापित उत्पादन क्षमता दोगुनी से अधिक हो गई है और अब ऊर्जा की देश में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एलपीजी की घरेलू क्षमता में जिस तरह वृद्धि की गई है वो भी अब मददगार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की आपूर्ति के लिए क्षमता बढ़ाई जा रही है और घरेलू एलपीजी उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का अब तक का सबसे अधिक विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत तीसरे स्थान पर है। इससे पहले कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि सरकार को मिसाइल विकास कार्यक्रम और अनुसंधान तथा विकास पर धन खर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को ड्रोन रोधी तकनीक पर भी ध्यान देना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले ने कहा कि सरकार विनियोग विधेयक के माध्यम से 4,13,000 करोड़ रुपए की पूरक मांगों की अनुमति चाह रही है। उन्होंने तर्क दिया कि ये दर्शाता है कि पिछले वर्ष पेश किया गया सरकार का मूल बजट वास्तविक व्यय से लगभग 8% कम था। भाजपा के हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि 2025-26 में भारत की जीडीपी 7.6% की दर से बढ़ी है। ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई। राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मोदी सरकार ने देश में वोट बैंक की राजनीति के बजाय प्रदर्शन आधारित राजनीति की शुरुआत की है। लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में रेलवे में बड़े बदलाव किए हैं।
रेलवे की फाइनेंशियल हेल्थ, अभी जो भी प्रयास हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में, बहुत सुधरी है। रेलवे का बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे, पैसेंजर एमिनिटीज पे, और पैसेंजर्स के लिए जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए।
श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए किए गए रिकॉर्ड आवंटन से देश के हर राज्य को लाभ होगा। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के शताब्दी रॉय ने कहा कि 341 रेलगाड़ियों में पेंट्री कार की सुविधा नहीं है। उन्होंने रेलगाड़ियों में स्वच्छ भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। सुश्री रॉय ने बताया कि रेलवे प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट में शामिल टिकटों को रद्द करने पर भी यात्रियों से शुल्क वसूला जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी आर के अरुण भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे ने अपनी परिवहन प्रणाली में बदलाव किया है और अब वैश्विक मानक स्थापित कर रहा है। कांग्रेस के राजमोहन उन्नीथन ने आरोप लगाया कि केरल में रेल परियोजनाएं धीमी गति से बढ़ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने भी केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। एक रिपोर्ट।
तृणमूल कांग्रेस ने दार्जिलिंग की 3 सीटें अपने सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के लिए छोड़ दी हैं। पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी एक बार फिर से भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी। भाजपा ने यहां से विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं अन्य राजनीतिक दलों और गठबंधनों की ओर से उम्मीदवारों की पूरी सूची घोषित करना बाकी है। उधर कांग्रेस पार्टी ने केरलम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 55 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश चेनीथला और के मुरलीधरन जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी केरलम विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने चथनूर विधानसभा सीट से अरुण ए, त्रिशूर सीट से रानी अंतो और कुट्टानाड विधानसभा क्षेत्र से जोसेफ मैथ्यू को उम्मीदवार बनाया है। केरलम में मतदान 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 4 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 19 पुलिस अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। आयोग ने डॉ राजेश कुमार सिंह को दक्षिण बंगाल का जबकि के जयरामन को उत्तर बंगाल का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया है। डॉ प्रणव कुमार आसनसोल दुर्गापुर और अखिलेश कुमार चतुर्वेदी हावड़ा के पुलिस आयुक्त होंगे। अमित कुमार सिंह को बैरकपुर का पुलिस आयुक्त और सुनील कुमार यादव को चंदन नगर का पुलिस आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले आयोग ने कल पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक समेत 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था। निर्वाचन आयोग ने केरलम में 5 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर उनके स्थान पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की है। नवनियुक्त अधिकारियों को कल सुबह तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने कहा है कि स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को चुनाव संबंधी कोई भी काम नहीं सौंपा जाएगा। निर्वाचन आयोग ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी मर्लिन जोसेफ को केरलम के कोझिकोड में पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। एक अन्य पुलिस अधिकारी श्री नारायणन, जिनका पहले कोझिकोड में पुलिस आयुक्त के पद से तबादला हो चुका था, वे त्रिशूर में अपर महानिरीक्षक के पद पर बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया है कि खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक और जहाज सुरक्षित हैं। श्री सिन्हा ने पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी।
हमारे सारे नाविक और जहाज सुरक्षित हैं गल्फ रीजन में। पिछले 24 घंटों में 161 भारतीय नाविकों को गल्फ रीजन में साइन ऑफ के बाद रिपैट्रिएट करके भारत वापस लाया गया है। ये काम हमारी एम्बेसीज और मिशंस के द्वारा कोऑर्डिनेशन से किया गया। एलपीजी कैरियर दूसरा नंदा देवी रात में करीब 2:30 बजे वो कांडला पे पहुंचा और अब दोनों ही एलपीजी कैरियर से शिवालिक और नंदा देवी से कार्गो का डिस्चार्ज हो रहा है। मल्टीपल डिस्चार्जेस हैं। नंदा देवी का डिस्चार्ज शिप टू शिप है, फ्रॉम मदरशिप टू डॉटरशिप वो अभी चल रहा है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
क्रूड अवेलेबिलिटी सामान्य है, हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर काम कर रही हैं, रिटेल आउटलेट्स पर कोई शॉर्टेज नहीं है, पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नेचुरल गैस के संबंध में भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जो भी कमर्शियल एलपीजी कंज्यूमर्स हैं अगर वो पीएनजी पर शिफ्ट हो तो अच्छा होगा। इसी दिशा में भारत सरकार भी प्रयासरत है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसल्स की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के साथ वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया।
भारत का पक्ष रहा है कि संवाद का रास्ता तय किया जाए, राजनयिक माध्यम का रास्ता तय किया जाए ताकि जल्द से जल्द इस संघर्ष को विराम पे लाया जाए। सभी देशों से ये हमारी आह्वान है कि संयम बरतें और संघर्ष को आगे बढ़ने से रोका जाए। जहां तक अपने संयुक्त राष्ट्र की बात की, वहां के सुधार की बात की, आपको पता है कि पिछले कई एक दशकों में ये हमारा पक्ष रहा है जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र का सुधार हो। और ऐसे मौके पर जब हम सुधार की बात करते हैं तो उसमें एक नया मायना आ जाता है और साथ ही साथ यही पता चलता है कि इसको जितना जल्दी करें उतना जल्दी बेहतर होगा संयुक्त राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए।
विदेश मंत्रालय में खाड़ी मामलों के अतिरिक्त सचिव असी महाजन ने बताया कि तेल टैंकर सेफ सी विष्णु के भारतीय चालक दल के 15 सदस्यों की शीघ्र वापसी में सहायता के लिए भारत का मिशन दल मौजूद है।
Our mission team is on ground to assist.
हमारी मिशन टीम जमीन पर मौजूद है और सेफ सी विष्णु के 15 भारतीय क्रू सदस्यों की जल्द वापसी सुनिश्चित करने में सहायता कर रही है। उन्हें सुरक्षित रूप से निकाला गया है और वे अभी बसरा के एक होटल में रह रहे हैं। ओमान, इराक और यूएई में हमारे मिशन संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है ताकि लापता भारतीय नागरिक का पता लगाया जा सके और 3 अन्य मृतक भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द स्वदेश लाया जा सके।
ऑफ द 3 अदर डिसीज्ड इंडियन नेशनल्स।
पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज एलपीजी वाहक पोत शिवालिक और नंदा देवी के भारतीय तट पर पहुंचने के बाद चालक दल से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने बताया कि चालक दल ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच फारस की खाड़ी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सतर्कता, समन्वय और जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया है। श्री सोनोवाल ने यह भी कहा कि देश अपने नाविकों की सुरक्षा और सुगम तथा कुशल समुद्री संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम एशिया में पिछले कुछ घंटों के दौरान संघर्ष बहुत तेज हो गया है। इजरायली सैन्य अधिकारियों ने ईरान की कमान संरचना पर एक बड़ा हमला करने का दावा किया है। इजरायली रक्षा बलों का कहना है कि उसके एक हमले में सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी और 22 अर्धसैनिक बलों का एक वरिष्ठ कमांडर मारा गया है। 28 फरवरी को आयतुल्ला अली खामनेई की मृत्यु के बाद लारिजानी ईरान के युद्धकालीन नेता के रूप में उभरे थे। वे देश के रणनीतिक और सैन्य प्रतिक्रियाओं का समन्वय कर रहे थे। लारिजानी की कथित मौत की ईरान ने कोई पुष्टि नहीं की है। एक रिपोर्ट।
पश्चिमी एशिया में तनाव तेजी से फैल रहा है। लेबनान में इसराइल सैन्य गतिविधि तेज हो गई है। जहरानी नदी के दक्षिण में नागरिकों के लिए नए निकासी आदेश जारी किए गए हैं, जबकि लगातार हमलों के बाद बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर घना धुआं उठता जा रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रीय आतंकरोधी केंद्र के प्रमुख जो कैंट ने ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल द्वारा युद्ध छेड़े जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखे पत्र में कहा है कि ईरान से अमेरिका को तत्काल कोई खतरा नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। रेल मंत्री ने लोकसभा में कहा सरकार ने पिछले दशक में रेलवे के सभी क्षेत्रों में बदलाव किया है। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सरकार ने कहा खाड़ी क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक और जहाज सुरक्षित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।